بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى أما يشركون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ بچاؤ، تمام پاکی اسی کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتاتے ہیں. وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے. تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں. یہ تھی آیت نمبر 1 سے 3. اس کا عنوان ہے میرے بندوں کو کہہ دو کہ مجھ سے ڈرے. اللہ کا ڈر ایک نعمت ہے جو بندے کو خواہشوں کا غلام بننے سے بچاتا ہے. یہ بھی ایک رزق ہے جس کو جتنا مل جائے. کچھ لوگوں کو فطری طور پہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان کی فطرت سلیم ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اللہ سے بے خوف زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کا زندگی میں آنا اللہ کے خوف کو بھر دیتا ہے. وہ لوگ جو قیامت کے آنے کے مطالبے کرتے تھے وہ بے خوف تھے، کیونکہ جب بندے کو قیامت کے آنے کا یقین ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ یہ نہیں کہتا قیامت کب آئے گی، وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت آ جائے گی تو اس دن میرے ساتھ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف دے دے. خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا. اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس بھی ہیں اور بہت سے نفے ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی. اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے. گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں. اور بھی وہ ایسی بہت ساری چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں. یہ تھی آیت نمبر 4 سے 8، 4 to 8. اس کا عنوان ہے اللہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کو تم جانتے بھی نہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان آیتوں میں گھوڑوں کی، خچروں کی اور مختلف جانوروں کی باتیں ہوئیں. ایک وقت تھا کہ دنیا میں چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری طرف لانے کی صرف یہی چیزیں تھیں. آج اللہ تعالیٰ نے گاڑیاں، جہاز، شپس اور کیا کیا چیزیں پیدا کر دیں. یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ نے کہا کہ میں تو وہ پیدا کروں گا جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں. مجھے جو حیرت ہوتی ہے نا، وہ بحری جہاز کو دیکھ کے ہوتی ہے. منو ٹنو وزن، اور اس کے اندر کتنی چیزیں بھری ہوتی ہیں اور وہ ڈوبتا نہیں ہے. یہ اللہ کی شان ہے نا. اور صرف سمندر نہ ہوتے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سمندر کیوں ہے، اتنا پانی کیوں ہے. شاید آپ نے کبھی گلوب کو دیکھا ہے کہ نہیں. میری تو فیوریٹ جاب ہے کہ میں گلوب کو دیکھتی ہوں. آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں زیادہ حصہ پانی ہے، خشکی کے تو چھوٹے چھوٹے خطے ہیں. کیوں؟ یہ پانی نے پوری دنیا کو ملایا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیوں بتایا کہ دیکھو تم دنیا میں آئے ہو، تم تو مزے سے آ کے بیٹھے ہو. کوئی ماں بچے کو پیدا کرنے کے وقت یہ پریشان نہیں ہوتی کہ اس بچے کی باقی چیزیں کیسے چلیں گی، لیکن اللہ نے کیسے خاموش انتظام کیا ہوا ہے. آج بھی ہمارے کھانے پینے کی جو چیزیں ملکوں میں، ہم یہاں اپنے ملکوں کی چیزیں پاتے ہیں، کبھی کیسے ہوتی ہیں، یہ اللہ کی شان ہے. تو جس نے اتنا کچھ پیدا کیا، کیا پھر ہم اس کی بات نہ سنیں؟ ایسے ہی رب نے پھر ہمارے لیے ایک ہدایت کا راستہ دیا، اور وہ کون سا تھا؟ اللہ کی کتاب کا راستہ. اگلی آیت میں اس کی طرف کچھ اشارہ ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ، اور بعض ٹیڑھی راہیں بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا. اس کا عنوان لکھ لیجیے آیت نمبر 9 کا، ٹیڑے راستوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پہ آ جاؤ، یہ رب تک پہنچائے گی. اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کا راستہ. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے بھی ہو، اور اسی سے وہ تمہاری کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. इसी ने रात दिन और सूरज चांद को तुम्हारे लिए ताबे कर दिया है और सितारे भी इसी के हुक्म के मातहत हैं। यकीनन इसमें अक्लमंद लोगों के लिए कई एक निशानियां मौजूद हैं। और भी बहुत सी चीजें, तरह तरह के रंग और रूप इसने तुम्हारे लिए जमीन में फैला रखी हैं। बेशक नसीहत कबूल करने वालों के लिए इसमें बड़ी भारी निशानी है, और दरिया भी इसी ने तुम्हारे बस में कर दिए हैं कि तुम इसमें से निकला हुआ ताजा गोश्त खाओ और इसमें से अपने पहनने के जेवरात निकाल सको। और तुम देखते हो कि कश्तियां इसमें पानी चीरती हुई निकलती हैं, और इसलिए कि तुम इसका फजल तलाश करो और हो सकता है कि तुम शुक्रगुजारी करो। और इसने जमीन में पहाड़ गाड़ दिए ताकि तुम्हें लेकर हिले ना, और नहरें और राहें बना दी ताकि तुम मंजिले मकसूद को पहुंचो। वह अलामत व बिन नजमी हम यहतदून, और बहुत सी निशानियां मुकर्रर फरमाई, और सितारों से भी लोग राह हासिल करते हैं। ये थी आयत नंबर 10 से 16, 10 to 16। इनका उनवान है अल्लाह की कायनात तुम्हारी खादिम। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए एक मुकम्मल जहान बनाया। क्यों? ताकि इंसान मुकम्मल तौर पर रब की इताअत करे, कोई कमी नहीं। ये नहीं कहा कि फुलां सारी चीजें तो मेरे कंट्रोल में, फुलां समंदर किसी बुजुर्ग के कब्जे में दे देता हूँ, थोड़ी वो भी काम कर ले। ये उस चीज का रद्द है जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया तो है, लेकिन अब इसका निजाम नहीं चला रहा। बस लोग कहते हैं कि जैसे पहिया घुमा दिया जाए वो घूम रहा है, हालांकि ये कायनात अपने वजूद के साथ इस चीज की दलील है कि अल्लाह ताला ने जो सब कुछ बनाया है वो अब चला भी रहा है। एक एक पत्ते को देखिए, एक एक फूल को देखिए। अगर अल्लाह ताला उसको पीछे से ना देख रहा हो तो आप देखिए कि कायनात का निजाम कैसे धर्म भरम हो सकता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह की नेमतों को पाके मर्जी के काम करने लगते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या होता है कि फिर वो सरकश हो जाते हैं। इंशाल्लाह इन सूरतों पे आपको एक पावर पॉइंट दिखाएंगे और आप देखेंगे कि क्या कायनात के रंग है। वो चीजें जिनको हम सुबह शाम देखते हुए बस ऐसे ही गुजर जाते हैं बगैर किसी तवज्जो किए हुए, वो चीजें हमारे लिए कितनी अहम है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि सितारों से हम तुमको राह दिखाते हैं। ये आसमान के सितारों का दूसरा मकसद है, तीसरा सूरह मुल्क में आएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सितारों के बस तीन ही मकासद हैं, जिसने इसके अलावा कोई तीसरा काम किया उसने शिर्क किया। और आज देखिए सितारों से किस्मत के हाल, सितारों से लोगों के हफ्ते कैसे गुजरेंगे, उनके मुकद्दर, उनकी तबीयतों पे उनके असर, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। अगर ये कोई इल्म है भी तो ये इल्म बातिल है, इसकी इजाजत नहीं है। और आसमान के सितारे लोगों को राह दिखाएं और दुनिया के सितारे लोगों को मिसलीड करें, तो ज़रूरत है इस बात की कि इंसान उसी तरह अल्लाह से रहनुमाई पाए जैसे कायनात की बाकी चीज़ें पा रही हैं। फरमाया, तो क्या जो वो पैदा करता है उस जैसा है जो पैदा नहीं कर सकता? क्या तुम बिल्कुल भी नहीं सोचते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो तुम इसे नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। और जो कुछ तुम छुपाओ और जाहिर करो अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। और जिन जिन को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए हुए हैं। मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, इन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। इसलिए इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम सबका माबूद सिर्फ अल्लाह अकेला है। और आखरत पर ईमान ना रखने वालों के दिल मुनकर हैं और वो खुद तकब्बुर से भरे हुए हैं। बेशक अल्लाह ताला हर उस चीज को जिसे वो लोग छुपाते हैं और जिसे जाहिर करते हैं बखूबी जानता है। वो गुरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इनसे जब दरियाफ्त किया जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया तो जवाब देते हैं कि अगलों की कहानियां हैं। इसका नतीजा ये होगा कि कयामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ उनके बोझ के भी हिस्सेदार होंगे जिन्हें बेइल्मी से गुमराह करते रहे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं। ये थी आयत नंबर 17 से 25, 17 to 25। इसका उनवान है जो सुनते नहीं उनको सुनाना चाहते हो। ये सारी आयात जो थी ये शिर्क के रद्द में थी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो बुजुर्ग जो दुनिया में लोगों के सामने फौत हुए, लोगों ने उनको कफन पहनाया, फिर कुछ लोगों ने मिलकर उनको नहलाया, फिर लोगों ने उनको कब्र में डाला, इन सारे मरहलों में तो वो कुछ ना कर सके। कोई इंसान किसी के मुंह पे कपड़ा बांध दे वो बांधने देता है? कोई अगर हमें पकड़ के शावर देना चाहे हम दिलवाते हैं? इंसान कितना रिजिस्ट करेगा? तो वो लोग जो मरे सब डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया, सांस और बदन का हिस्सा टूटा। उसके बाद सारे मरहले गुजारते हुए जूं ही वो कब्र में डाले गए तो वो मुख्तारे कुल हो गए। अगर वो कुछ कर सकते तो क्या अपने ऊपर गर्म पानी डालने देते, बेरी के पत्तों से गुसल दिलवाते, सफेद कोरे लट्ठे के अंदर अपने आप को लिपटवाने देते, कब्र के अंदर उतरवाने देते? अकल नहीं काम करती कि अगर वो कुछ कर सकते तो आज तक कब्र की मट्टी हटा के खुद बाहर आ जाते। बताओ, जो सब करनी वाला तुम्हारे ख्याल में है, वो अपने लिए कब्र को खोल के बाहर आने वाला क्यों नहीं बन जाता? ये लोगों की एक कम अकली है कि उन चीजों को पूछने लगते हैं जो खुद भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। और यही लोग हैं जो इस कायनात से अंधे बहरे होके गुजरते हैं, और जब उनको अल्लाह का कलाम सुनाया जाए तो वो कहते हैं ये पिछलों की कहानी है। ऐसे लोगों का हाल क्या होगा? कल कयामत के दिन अपने बोझ के साथ साथ दूसरों के बोझ भी उठाएंगे। शिर्क का इब्ताल है इस सूरत में बहुत ज्यादा। एक तरफ नेमतों की भरमार है, अल्लाह ताला कायनात की चीजें बना के, और साथ ही हर थोड़ी देर बाद फिर कहेगा देखो फिर भी तुम अल्लाह को छोड़ के दूसरों को मानते हो। अब देखिए कि जिस कब्र वाले के सामने आप जाके पुकार रहे हैं उसको, उससे ज्यादा तो ताकत आपके पास है। अगर आपको कोई पकड़ेगा भाग सकते हैं, कोई आपके ऊपर कोई हाथ डालेगा आप उसको रिजिस्ट कर सकते हैं, जो कब्र में मौजूद है वो बेचारा तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हम तो उन सोने वालों को भी आराम से नहीं सोने देते। दुनिया में कोई सो रहा हो तो हम कहते हैं आराम से सो, शोर ना करो, खटका ना करो, ये सो रहे हैं। खास तौर पे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं या जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जिन बुजुर्गों की आप रिस्पेक्ट करते हैं आप उनको सोने ही नहीं दे रहे। अल्लाह ताला करे हम वात उन गई रुख, या ये मुर्दा है ये जिंदा नहीं है, वबा या शुरून, इनको तो ये भी नहीं पता कि हम कब उठेंगे। तो अल्लाह करे के ये बात समझ आ जाए। और अगर पिछली जिंदगी में कभी किसी वक्त कोई ऐसा जाहरी या बातनी शिर्क हो चुका तो अल्लाह ताला उसको माफ कर दे और आइंदा के लिए हमारी इसलाह फरमा दे। कद मकर अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले के लोगों ने भी मकर किया था, आखिर अल्लाह ने इनके मंसूबों की इमारत को जड़ों से उखेड़ दिया और इनके सरों पर इनकी छतें ऊपर से गिर पड़ी, और इनके पास अजाब वहां से आ गया जहां से इनको वहमो गुमान भी ना था। फिर क्यामत वाले दिन भी अल्लाह इनको रुस्वा करेगा और फरमाएगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम लड़ते झगड़ते थे, जिन्हें इल्म दिया गया था। वो पुकार उठेंगे कि आज तो काफिरों को रुस्वाई और बुराई चिमट गई। अल्लज़ीन ततवफ्फाहुमुल मलाइका, वो जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, फरिश्ते जब इनकी जान कब्ज करने लगते हैं इस वक्त वो झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे। क्यों नहीं, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो कुछ तुम करते थे। बस अब तो हमेशगी के तौर पर जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, बस क्या ही बुरा ठिकाना है गरूर करने वालों का। ये थी आयत नंबर 26 से 29, 26-29। इसका उनवान है अब पछताए क्या होत। हमने देखा कि वो लोग जो सारी जिंदगी खुदा फरामोशी की गुजार गए, मौत के फरिश्ते को देख के सरेंडर करते हैं, गिव अप करते हैं। ये तो ऐसे ही शख्स है जो पुलिस मैन को आता देख कर कहे कि मुझे छोड़ दो, मैं तौबा करता हूँ। कोई पुलिस मैन नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त इसका ये कहना असल में इस बात की दलील है कि इसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो लोग जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं, वो सारी जिंदगी अल्लाह के दीन को फरामोश करके जाते हैं। लेकिन कल क़यामत के दिन ऐसे लोग, क़यामत तो क्या, जब उनकी अपनी मौत आ जाएगी तो उनका यही हाल होगा, और वही लोग हैं जो फिर अल्लाह के सामने मुजरिमों के तौर पे पेश किए जाएंगे। इसके बरक्स वो लोग जिनका टेस्ट अच्छा था, उनका हाल क्या होगा। वकील लिल्लज़ीन तक़ू माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, और परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल फरमाया, तो वो जवाब देते हैं कि अच्छे से अच्छा, जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है और आखरत का घर यकीनन बहुत ही बेहतर है, और क्या ही खूब परहेजगारों का घर है। हमेशगी वाले बागात जहां वो जाएंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जो कुछ वो तलब करेंगे वहां उनके लिए मौजूद होगा। परहेजगारों को अल्लाह ताला इसी तरह बदले अता फरमाता है। कौन थे वो? अल्लज़ीन ततवफ्फाहुमुल मलाइका, वो जिनकी जाने फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो पाक साफ होंगे, कहते हैं तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती है, जाओ जन्नत में अपने इन आमाल के बदले जो तुम किया करते थे। अल्लाह ये हमें भी सुनवाना। ये थी आयत नंबर 30 से 32, 30-32। इसका उनवान है इस दुनिया को अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजार लें। थोड़े दिन की बात है, फिर वो दुनिया आपकी चाहत की होगी। अच्छी डील है कि नहीं? जो लोग ये चाहते हैं ना कि ये दुनिया भी हमारी मर्जी की हो और वो भी हमारी मर्जी की हो, वो भूल में है। एक चाहत तो कबूल करनी पड़ेगी। थोड़े दिन की रब की मर्जी मान लें, फिर ज्यादा दिन इंशाल्लाह अपनी मानेंगे। जैसे कोई बीमार होता है ना, तो माँ उसको कहती है बेटा थोड़े दिन की बात है, ये दवा खा लो फिर तुम्हें सेहत मिल जाएगी, जो चाहोगे खाओगे। लेकिन वो जिद्दी बच्चे वो कहे नहीं, हमें अभी चाहिए चाहे इसके बदले में हम मर जाएं। तो वो लोग जो इस दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियों से जीते हैं, वो असल में यही पैगाम दे रहे हैं कि हमें ये चंद दिन की ऐश तो पसंद है, हमेशा की ऐश को हम छोड़ सकते हैं। हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, क्या ये इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनके पास फरिश्ते आ जाएं या तेरे रब का हुक्म आ जाए। ऐसा ही इन लोगों ने भी किया था जो इनसे पहले थे, इन पर अल्लाह ताला ने कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे, बस इनके बुरे आमाल के नतीजे इनको मिल गए और जिसकी हंसी उड़ाते थे इसने इन सबको घेर लिया। मुशरिक लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह चाहता तो हम और हमारे बाप दादा इसके सिवा किसी और की इबादत न करते, न इसके फरमान के बगैर किसी चीज को हराम करते, यही फेल इनसे पहले के लोगों का रहा, तो रसूलों पर तो खुल्लम खुल्ला पैगाम का पहुंचा देना है। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तमाम माबूदों से बचो, बस बास लोगों को तो अल्लाह ने हिदायत दी और बास पर गुमराही साबित हो गई, बस तुम खुद जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा कुछ हुआ। गो आप इनकी हिदायत के ख्वाहिशमंद रहे लेकिन अल्लाह तला उसे हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे, और न कोई इनका मददगार होता है। वो लोग बड़ी सख्त कस्में खा खा कर कहते हैं कि मुर्दों को अल्लाह जिंदा नहीं करेगा, क्यों ना, जरूर जिंदा करेगा, ये तो इसका बरहक लाजमी वादा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इसलिए भी कि ये लोग जिस चीज के अंदर इख्तलाफ करते थे इसे अल्लाह ताला साफ साफ बयान कर दे, और इसलिए भी कि खुद काफिर अपना झूठा होना जान ले। इन्नमा कौलुना, बेशक जब हम किसी चीज का इरादा करते हैं तो सिर्फ हमारा ये कह देना होता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। ये थी आयत नंबर 33 से 40, 33 to 40। इसका उनवान है चोरी और सीना जोरी। कुछ लोग दुनिया में भी यही रवैया अख्तियार करते हैं और अल्लाह के साथ भी यही करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बताता है कि तुम्हें खत्म करना और जहन्नुम में डालना मेरे लिए इतना ही आसान है जैसे कुन कह के फयकून उस काम का हो जाना। इस दुनिया में आप देखिए कि लोग अल्लाह को छुटलाते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको मजीद मौके देता है, इससे वो ये समझने लगते हैं कि अल्लाह ताला नाउसुबिल्ला मजबूर है, हालांकि अल्लाह ताला मजबूर नहीं है, सिर्फ वो मौका दे रहा है, मोहलत दे रहा है। वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू, जिन लोगों ने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह की राह में तरके वतन किया है, हम इन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में ही अता फरमाएंगे और आखरत का सवाब तो बहुत ही बड़ा है, काश के लोग इससे वाकिफ होते। किन लोगों को मिलेगी आखरत? अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो जिन्होंने दामने सब्र न छोड़ा और अपने पालने वाले पर भरोसा करते रहे। आपसे पहले भी हम मर्दों को भेजते रहे जिनकी जानिब वही उतारा करते थे, बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से दरियाफ्त करो। दलीलों और किताबों के साथ ये जिक्र हमने आपकी तरफ उतारा है कि लोगों की जानिब जो नाजिल फरमाया गया है आप इसे खोल खोल कर बयान कर दें, शायद कि वो गौर व फिक्र कर लें। अफामिनल्लज़ीन मकरु सय्यिआत, बदतरीन दाव पेच करने वाले क्या इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह इन्हें जमीन में धसा दे या इनके पास ऐसी जगह से अजाब आ जाए जहाँ का इन्हें वहमो गुमान भी ना हो, या इन्हें चलते फिरते पकड़ ले, ये किसी सूरत में अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं, या इन्हें डरा धमका कर पकड़ ले, बस यकीनन तुम्हारा परवरदिगार आला शफकत और इंतहाई रहम वाला है। ये थी आयत नंबर 41 से 47, 41 to 47। इसका उनवान है तुम अल्लाह की पकड़ से दूर नहीं हो। हाईलाइट कर लीजिए इन आयात को, आयत नंबर 45 से 47 तक। जब इंसान दुनिया में गुनाह करता है ना, तो असल में वो यही साबित कर रहा होता है कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, और गुनाह करके बेखौफ हो जाना अल्लाह के अजाबों को बुलाता है। ये अल्लाह की शान है, वो दुनिया में छोड़ दे, वो दुनिया में पकड़ ले, असल बात यह है कि जो यहाँ ना भी पकड़ा गया वो वहाँ पकड़ा जाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अपनी पकड़ से बचा ले। अल्लाहुम्मा ला तक्तुलना बिग़ज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक वाफ़िना क़ब्ला ज़ालिक।